कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस URL katha-path.blogspot.in। संदीप मील की कहानी बाकी मसले। हवाओं के झोंके इधर से उधर आते और चंद पलों में ही धूरों की शक्लें बदल जाती। न जाने विभाजन के बाद कितने रेत के कण, परिंदे, इंसानी जज्बात और दुआएं सरहद को बेईमानी करती हुई इधर से उधर और उधर से इधर आती रही हैं और सियासी रंजिशों को अंगूठा दिखाती रही हैं। ऐसे में अफसोस यही है कि दोनों मुल्कों की हुकूमतें छाती ठोंक कर दावा करती हैं कि उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हुकूमतें जाने अपने दावे। रंजीत सिंह को तो ये भी नहीं पता था कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच लफड़ा क्या है। क्रिकेट मैच के दौरान जिक्र आता कि पाकिस्तान नाम के मुल्क को हराना हिंदुस्तान की नाक का सवाल है, और भला वो नाक भी किसने देखी थी। शायद नाक मुल्कों के जिस्म के किसी गुप्त हिस्से में होती है, अतः वो हुक्मरानों को ही दिखती है, अवाम को नहीं। वैसे भी अवाम मुल्क की नाक से नहीं, अपनी नाक से सांस ले रहा था, जिसे हुक्म के हथौड़ों से चपटा किया जा रहा था। बहरहाल क्रिकेट मैच के दौरान रंजीत सिंह के गांव में जिनके घरों में टीवी थे, वहां देखने वालों का मजमा लग जाता। इत्तेफाक से बिजली गुल हो जाती तो देखने वाले बिजली विभाग की मां बहन करते हुए तुरंत रेडियो के पास मोर्चा संभाल लेते। हर कोई अपने अपने ढंग से पाकिस्तान के हारने की भविष्यवाणी करता। फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद से शुरू हुए नारे वाया पाकिस्तान मुर्दाबाद होते हुए मुसलमान मुर्दाबाद तक पहुंच जाते। बस वो पाकिस्तान को इतना ही जानता था। हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी देश की नौसिखिया टीम से क्रिकेट मैच की हार बर्दाश्त कर सकता है, पर पाकिस्तान से नहीं। शायद उधर भी यही हाल हो। गतसिंहपुर से 10-15 किलोमीटर की दूरी पर कांटों की सरहद थी जो जमी को बांटती थी, दिलों को नहीं। उसी कांटों की सरहद से 100 फीट आगे जमी के सीने पर खंजर की तरह भोंके हुए जीरो लाइन बयां करने वाले पत्थर थे। उससे उतनी ही दूरी पर पाकिस्तानी निगरानी टावर थे, और वैसे ही टावर इधर भी खड़े थे। बस इधर टावर और बाड़ के बीच एक सड़क थी। सड़क के किनारे भारी भरकम सर्च लाइटें जो रात के अंधेरे को दिन जैसे उजाले में तब्दील कर देती। दोनों तरफ बने इन टावरों पर बैठकर सैनिक एक दूसरे की हरकतों पर नजर रखते हैं। दोनों ओर के टावरों के बीच की दूरी इतनी थी कि संवाद नामुमकिन सा था। उस सरहद पर कुछ सुनता था तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, या फिर पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। रंजीत सिंह जिंदाबाद मुर्दाबाद की वजह जाने बगैर नारों को गगन की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देता। उसे मोर्चे पर आए हुए 3 महीने हुए हैं। एक सीधा साधा नौजवान था जिसे प्रशिक्षण के दौरान से ही नफरत के जहर के इंजेक्शनों से पूरा गया, मगर शुक्र है कि वो अभी तक फटने वाला बम नहीं बना था। रात की ड्यूटी के दौरान कभी कभार तीसरे पहर उसका ठंडा पड़ा हुआ प्रेम शीत लहर से गर्म मिजाज हो जाता। चुनांचे वो किसी हिंदी फिल्म का गीत गाना शुरू कर देता, मगरमच्छ की तरह लेटे हुए रेगिस्तान में हवा की सनसनाहट साज का काम कर जाती। गला ठीक होने की वजह से गीत के बोल धोरों में गूंजते कि हवलदार मानसिंह दहाड़ उठा, ए छोरे बड़ा भोर सिंह बन गया रे तू। हवलदार की आवाज सुनकर रंजीत सिंह रुक जाता और सोचता कि ये भूर सिंह कौन था। उसके जहन में ऐसा कोई नाम व चेहरा न होने की वजह से एक दिन पूछ ही लिया, हवलदार साहब ये भूर सिंह कौन था। मानसिंह जो एक खिजड़ी के सहारे पीठ टिकाए आराम कर रहा था खिलखिलाकर हंसते हुए बोला, रे तेरे जैसा गायक था मेरे ही गांव का, तेरी ही तरह पौ पौ करके मर गया। ये व्यंग्य सुनकर रंजीत सिंह के खून की गर्मी बढ़ गई और वो तमतमाकर बोला, मेरे गाने से आपको क्या तकलीफ। ओ तेरी तो हिंदुस्तानी गाने पाकिस्तानियों को नहीं सुनाए जाते। हवलदार खड़ा हो गया। रंजीत सिंह को इस बाबत ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए शांत होकर पूछा, तो फिर उन्हें क्या सुनाए। पाकिस्तान की तो मां की, ओ हिंदुस्तान की तो बहन की, जवाब देने के लिए उधर जैसे कोई तैयार ही बैठा हो। फिर काफी देर तक हिंदुस्तान पाकिस्तान की मां बहनों को मोटी मोटी गालियां दी गईं। ये सुनने के बाद पता नहीं क्यों उसका दिल उचट गया और वो चुपचाप टावर पर बैठा सीमा ताकता रहा। उसे समझ में नहीं आया कि दोनों मुल्कों की मां बहनों ने सीमा का क्या बिगाड़ा है, लेकिन धीरे धीरे ये बात थोड़ी बहुत उसके समझ में आने लगी। जब सुबह से लेकर शाम तक उसकी टुकड़ी बेखौफ हिंदुस्तानी औरतों को भी गालियां देती, उसने तय कर लिया कि औरत का कोई मुल्क नहीं होता। उसे हिंदुस्तानी भी गाली देते हैं और पाकिस्तानी भी। वे सुबह मुंह भी गालियों से धोते हैं और रात का बिस्तर भी गालियां। जब कोई बड़ा अफसर टुकड़ी को संभाल कर जाता तो मुश्किल से 10 कदम दूर पहुंचता कि सिपाही उसे 2-4 मोटी मोटी गालियां दे मारते। अगर कान सही हैं तो ये उसे भी सुन जाती, पर वो मुड़कर नहीं देखता। इस प्रकार ये सेना के अलिखित नियमों में शुमार हो गई हैं। जून का महीना था, कानों पर पड़ते लू के थपेड़े जैसे कि पाकिस्तानी सैनिक लबलबियों में कारतूस की जगह लू का इस्तेमाल करते हों। टावर पर बैठकर दूरबीन से सरहद निहारना रणजीत सिंह का रोज का काम था। लोहे से बने हुए टावर पर 3 ही चीजें आमतौर पर देखी जाती, भूरे रंग का रेडियो, पानी की बोतल और खुद रणजीत सिंह। लबलबी और दूरबीन की पहचान रणजीत सिंह से ही जुड़ी हुई थी। वैसे तो हवलदार मान सिंह सरहद से जुड़े हजारों किस्से सुनाता था, जिनके सिर पैर खोजने निकल जाओ तो उम्र बसर हो जाएगी। ऐसी कोई जिंदा या मुर्दा चीज नहीं थी जो सरहद पर दिखे और हवलदार साहब उस पर कोई किस्सा न जड़ दें। हवलदार का किस्सा सुनाने का अंदाज भी था एकदम सांप के बदन जैसा चिकना। रेडियो के बारे में उनका वो मशहूर किस्सा तो आपने सुना ही होगा। एक बार गांव में एक फौजी रेडियो लेकर आया, सारा गांव उसे देखने गया। बहुत गजब गाता था फौजी। सुबह घर से बाहर गया हुआ था कि उसके पिताजी ने रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो बजा नहीं। काफी मिन्नतें खुशामदें करने के बाद भी नहीं बजा तो उन्हें गुस्सा आ गया और जोर से रेडियो को उन्होंने जमीन पर दे मारा। रेडियो टूटकर बिखर गया और उसमें से एक मरी हुई चूहिया निकली। फौजी के पिताजी ने घर वालों को समझाया, जब गायक ही मर गया तो गीत कौन गाता। जो भी हो, हवलदार साहब के किस्सों से टाइम पास जरूर हो जाता था। रणजीत सिंह के सामने वाले टावर पर एक नौजवान आया था। उसका हम उम्र, काली दाढ़ी और बड़ी बड़ी आंखें। शायद उसका आज पहला ही दिन था। जो ही दोनों की दूरबीन एक दूसरे के चेहरे पर पड़ी तो उनकी आंखें अंगारे बरसा रही थीं। वो एक दूसरे को कच्चा चबा देना चाहते थे, लेकिन दूरी इतनी थी कि ये काम मुमकिन नहीं था। मन ही मन गालियां देकर रह गए। शाम तक यही हाल रहा। तंग आकर रणजीत सिंह ने रेडियो ऑन किया। ये वही रेडियो था जिसका जिक्र आते ही हवलदार साहब उस फौजी वाला किस्सा जड़ देते थे। रेडियो पर समाचार आ रहे थे, भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो करारा जवाब मिलेगा। आज भारत ने मिसाइल विनाश 405 का सफल परीक्षण कर दक्षिण एशिया में ठोस दबदबा बना लिया है। हट साला, कोई हिंदी फिल्म का गाना ही लगा देते, समाचारों से तो ठीक था, मन हल्का हो जाता, पर यहां तो गोला बारूद के अलावा कुछ नजर नहीं आता। छोरे, फौजी होकर गोले बारूद से डरता है? अरे तेरी उम्र में तो हम आग से खेल जाते थे। सुना है हवलदार साहब, आप तो हमेशा से ही ऐसे थे, क्या आप कभी जवान भी थे? ये सुनकर हवलदार साहब को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक पत्थर पाकिस्तान की तरफ इस अंदाज में फेंका जैसे बम दाग रहे हों। वे कोई किस्सा सुनना चाहते थे पर अब गाली पाठ शुरू कर दिया था। रणजीत सिंह उनका स्वभाव जानता था, कोई प्रतिक्रिया उसने नहीं दी। दूसरे दिन भी उधर वही नौजवान था। वैसे ही दोनों में तकरारें हुई और फिर रणजीत सिंह ने रेडियो ऑन किया। अंग्रेजी में समाचार आ रहे थे। ये साले या तो गोला बारूद देंगे या अंग्रेजी में समाचार। गधों को समझ में नहीं आता कि सीमा पर तुम्हारा बाप अंग्रेजी जानता है। हवलदार साहब ने टूटी फूटी अंग्रेजी में बड़बड़ाकर जताने की कोशिश की कि वो अंग्रेजी जानता है, पर रणजीत सिंह ने जब इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो मजबूरन उसे चुप होना पड़ा। उस तरफ का सैनिक भी रेडियो ऑन करके झल्लाना शुरू कर देता, शायद उसका भी वही हाल हो। एक दिन दोनों सैनिकों ने उकताकर कुछ मजाक करने के लहजे में इशारे किए। रणजीत सिंह ने हाथ ऐसे हिलाया जैसे कि पाकिस्तान पर हमला बोल देगा। सामने वाले ने भी हिंदुस्तान को तबाह करने के अंदाज में जवाब दिया। वे कई दिनों तक ऐसी ही ऊटपटांग हरकतें करते रहे, लेकिन हाथों के इशारों की भी अपनी सीमाएं होती हैं। अंत में एक दिन तंग आकर रणजीत सिंह एक चौक का टुकड़ा ले आया और टावर की लोहे की दीवार पर कुछ देसी गालियां लिख डाली। सामने वाला सैनिक गालियां समझ गया, क्योंकि विभाजन के वक्त गालियां नहीं बांटी गई थीं, क्योंकि हुकूमतों के पास ये पर्याप्त मात्रा में थीं और इन्हें ईजाद करने वाली सामाजिक मानसिकता भी थी। सामने वाले ने भी उससे ढाई सेर भारी गालियां लिख डाली। ये सिलसिला चलता रहा और उन्हें पता भी नहीं चला कि वे कब गालियों से हटकर अपनी अपनी दुनिया की बातें करने लगे। सुबह आते ही दोनों की दूरबीनें एक दूसरे के टावरों पर टिक जाती। एक दिन रंजीत सिंह को हवलदार साहब ने देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने एक किस्सा सुना मारा जिसका लबोलुभाव ये था कि दुश्मन से दोस्ती और तलवार से शादी कभी भी गला काट सकती है। मगर आप तो जानते ही हैं कि रंजीत सिंह हवलदार साहब के किस्सों को क्या तवज्जो देता था। आफाक नाम था उस तरफ के टावर वाले सैनिक का। ये बात भी रंजीत सिंह को चौक ने ही बताई। जब पहली बार उसने ये नाम सुना तो इतना अच्छा लगा कि अपने होने वाले बच्चे का भी यही नाम रखने का इरादा बना लिया। लेकिन समस्या ये थी कि नाम मुस्लिम था और हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत से वो वाकिफ भी था। अतः भविष्य की समस्याओं को ध्यान में रखकर उसने समाधान निकाला कि बच्चे को घर में आफाक कहा जाएगा और बाहर का नाम कोई और होगा। उन दोनों के बीच होने वाले इस वार्तालाप की भनक दोनों हुकूमतों को नहीं थी, वरना कम से कम दो आयोग तो बैठा ही दिए जाते और मुमकिन है कि सैनिकों के साथ चौक को भी कुछ न कुछ सजा मिलती। इन वार्तालापों के माध्यम से वे एक दूसरे की कई चीजों के बारे में जानने लगे, मसलन खाने पीने से लेकर फिल्मी गीतों तक। एक बात का अंश कुछ इस तरह से है, सुनिए। यार आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जनाब खबर ही ऐसी है। तो अब खबर सुनने के लिए रेडियो ऑन करूं या ऐसे ही बता दोगे? अरे मेरी आपा का निकाह तय हो गया है। ओए फातू की शादी है और हमको बुला भी नहीं रहे हो। यार तू भी कैसी बातें करता है, भला दोस्तों को दावत की जरूरत होती है? तेरी निकाह में हम 20 दिन पहले बिना बुलाए टपक जाएंगे। इतने में दोनों की नजरें कांटों की बाढ़ पर पड़ी और दूरबीन टावरों से हट गई। रंजीत सिंह के दिमाग में यही घूम रहा था, फातू, शादी, दावत, कांटों की बाढ़, सरहद। रात भर उसने नींद को आंखों से हजार कोस दूर पाया। अगले दिन आते ही उसने टावर पर अपनी पूरी कल्पना और यथार्थ को मिलाकर एक फूल बनाया। जब आफाक ने फूल को देखा तो पूछा, भाईजान इस उजड़े हुए चमन में ये गुल किसके वास्ते खिला है? यार गिफ्ट है। तो फिर ये तोहफा किसके लिए है? आपकी बहन की शादी है ना, मेरी तरफ से उन्हें दे देना। इस पर आफाक का गला भर आया। टावर पर रोमन में शुक्रिया लिखते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। कई दिनों से मोर्चे पर हलचल नहीं हो रही थी। आफाक बहन की शादी में गया हुआ था, उसकी जगह किसी काले से सिपाही ने ले ली। रंजीत सिंह मायूस रहने लगा। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि जंग छिड़ गई। छुट्टी पर गए हुए सैनिकों को वापस बुलवा लिया गया। आफाक भी आ गया। चिड़ियों की चहचहाट की जगह तोपों के धमाके सुनाई दे रहे थे। सैनिकों में दुश्मनी परवान पर थी। रंजीत सिंह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि गोली चलाने का हुक्म दे दिया गया। गोलियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजने लगा। गोलियां कहीं रेत में तो कहीं सैनिकों के जिस्म में घुस रही थीं। रंजीत सिंह और आफाक आमने सामने थे। टावरों पर चौक से लिखी हुई वे तमाम इबारतें उनकी स्मृतियों में रील की तरह चल रही थीं। बीच में रेडियो के समाचार और आपसी रंजिश के दृश्य भी आ रहे थे। हवलदार मानसिंह दहाड़ा, तुम भी गोली चलाओ। रंजीत सिंह के हाथ बर्फ हो चुके थे। उसने सूखे गले और कांपते हुए होंठों से बस इतना ही कहा, हवलदार साहब, बंदूक की नोक पर सरहदों के मसले हल नहीं होते। संदीप मील की कहानी, बाकी मसले। कहानियों के वाचन का ब्लॉग कॉफी हाउस, URL कथा-पाठ.blogspot.in।